समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात, आज सवेरे में आप सभी को फरहत नाज का नमस्कार। मनुष्य झूठ के साथ समझौता करके जीवन की कितनी संपदा नष्ट कर देता है, ये कहना था प्रतिष्ठित साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का, जिनकी आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। जी हां, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार। इसके अलावा महानगरों की खबरों का रुख करेंगे, मौसम की जानकारी लेंगे, प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले का समाचार आप तक पहुंचाएंगे, खेल जगत की खबरें होंगी और अंत में इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे और याद करेंगे कुछ जानी मानी हस्तियों को। आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी नीना राकल। नमस्कार नीना।
नमस्कार फरहत। And a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. We bring you our ever exciting daily news magazine program Aaj Savere, wherein over the next half an hour we will bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 16th of January. So let us begin with the headlines first, Farah.
Jini. सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सिंगापुर राष्ट्रपति की यात्रा से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम से मिलेंगे। श्री षणमुगरत्नम आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में सिंगापुर के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर, औद्योगिक पार्क, कौशल विकास, डिजिटीकरण और व्यापार बढ़ाने में सहयोग पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से व्यापक साझेदारी को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति षणमुगरत्नम भारत की 5 दिन की यात्रा पर हैं।
Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the Fast Track Immigration Trusted Traveller Program at Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad, Cochin and Ahmedabad airports today. This will provide world-class immigration facilities to travellers, making international travel seamless and secure. According to the Home Ministry, applicants are required to complete online registration by filling in their details and uploading the required documents on the portal fttp.mha.gov.in to enroll in this program. The biometric data of registered applicants will be captured either at the foreigner's regional registration office or while passing through the airport. Registered travellers will need to scan their airline boarding pass at the e-gate, followed by scanning their passport. At both the arrival and departure points, the passengers' biometrics will be authenticated at the e-gates. Once this authentication is successful, the e-gate will automatically open and immigration clearance will be deemed as granted.
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 19 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेजे जा सकते हैं। श्रोता नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम पर भी अपने विचार भेज सकते हैं। इस कड़ी के लिए कल तक सुझाव स्वीकार किए जाएंगे।
Union Minister Dr. Jitendra Singh has interacted with senior civil servants of Kenya, headed by Attorney General Ms. Dorcas Agik Abua Oduor. Addressing the gathering, the minister highlighted that the political and administrative structures have been influenced by the historical ties between Kenya and India due to their shared experience under British colonial rule. He noted that both countries are committed to democratic principles, transparency, and good governance. The minister also spoke about the maritime challenges and various environmental concerns, emphasizing the need to find sustainable solutions.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में तीसरे काशी तमिल संगमम और केटीएस पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि इस वर्ष काशी तमिल संगमम अगले महीने की 15 से 24 तारीख तक मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 दिन के इस कार्यक्रम में 1200 प्रतिनिधि, कारीगर और नव प्रवर्तक शामिल होंगे। इस वर्ष के आयोजन का विषय सिद्ध चिकित्सा पद्धति और शास्त्रीय तमिल साहित्य में अगस्त्य ऋषि के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालना है। इस कार्यक्रम में 5 श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 1000 लोग भाग लेंगे। इनमें विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, कारीगर, पेशेवर, छोटे उद्यमी, महिलाएं और शोधकर्ता भी शामिल हैं।
In Kerala, Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh will inaugurate the first edition of the Kochi Dialogue 2025, organized by the Ministry of External Affairs in association with the Centre for Public Policy Research in Kochi this evening. The two-day track 1.5 Diplomacy Dialogue will focus on India's Look West Policy in Action, People, Prosperity and Progress, to foster partnerships and collaborations to strengthen relations between India and the Gulf Cooperation Council countries.
मैनीना, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने चरणबद्ध कार्रवाई योजना ग्रैप 3 और 4 के तहत सभी कार्रवाई लागू करने का फैसला किया है। ग्रैप 3 के तहत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैर जरूरी निर्माण कार्यों तथा सड़क निर्माण और खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और दिल्ली तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिलों में BS3 पेट्रोल वाहनों और BS4 डीजल वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार और NCR की राज्य सरकारें अनिवार्य रूप से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन करेगी। चरणबद्ध कार्रवाई योजना 4 के तहत विद्यालयों को अनिवार्य रूप से कक्षा 6 से 9 और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन करना होगा।
Israel and Hamas have agreed a Gaza ceasefire and hostage release deal following meetings with Qatar's Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. The deal is set to begin on Sunday and will last 42 days. Announcing about the deal in Doha yesterday, Prime Minister Al Thani said it will lead to the release of Israeli captives and surging humanitarian aid to Gaza. A Hamas official said that it has approved the draft from mediators in Doha. Confirming the deal, US President Joe Biden said American hostages will be freed in the first phase. In a social media post, US President-elect Donald Trump described the deal as epic and said the agreement happened as a result of his historical election victory.
और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ की रौनक देखते ही बन रही है। जगमगाता संगम तट करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का साक्षी बन रहा है। इस वर्ष का महाकुंभ खास इसीलिए है क्योंकि 144 साल बाद ऐसा ग्रह योग बना है जो इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाता है। मकर संक्रांति के बाद दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन किया जाएगा।
Special attention is being given to healthcare in Mahakumbh 2025, which is underway in Prayagraj. A remarkable highlight of the Mahakumbh's healthcare efforts is the Netrakumbh Eye Fair, an initiative aimed at combating vision impairment.
वहीं भारतीय रेलवे की तैयारियां भी जोरों पर हैं। रेलवे ने महाकुंभ के तीसरे दिन 349 नियमित ट्रेनों के अलावा कुंभ के लिए 137 विशेष ट्रेनें संचालित की हैं। 46 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के दौरान 13,000 से अधिक ट्रेनें चलाने की योजना है। इनमें से 10,000 से अधिक नियमित और 3,000 से अधिक विशेष ट्रेनें हैं। 17 नए स्थायी यात्री आश्रय बनाए गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर यात्री आश्रयों की कुल संख्या 28 हो गई है और इसके अलावा 5,900 सुरक्षा कर्मियों, 764 नए CCTV कैमरों और ड्रोन के साथ साथ महाकुंभ के लिए सुरक्षा को भी पुख्ता किया गया है।
The Grand Cultural Extravaganza Sanskriti Ka Mahakumbh will begin today at the ongoing Mahakumbh Mela in Prayagraj. The event will showcase the rich tapestry of Indian culture through a series of captivating performances by renowned artists. The main stage, Ganga Pandal, will host performances by renowned artists from across the country, including a special presentation by Shankar Mahadevan on the opening day. Cultural programs will also begin at the Yamuna and Saraswati Pandals today, while the Triveni Pandal will host a blend of cultural melodies starting January 21st. The Ganga Pandal will capacity of 10,000 spectators will be the main venue for this celebration of devotion and heritage.
और अब महाकुंभ की खबरों के बाद रुख कर लेते हैं महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले बात चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी खबरों की। नीना, क्या है सबसे पहले आपके पास चेन्नई में?
यस फरत, As part of the 80th staff course, a team of 130 defense officers, including international student officers from the Defense Services Staff College, paid a visit to Combat Vehicles Research and Development Establishment at Avadi yesterday. J. Rajesh Kumar, outstanding scientist and director of CVRDE, addressed the student officers. During the visit, the Defense Service Staff students had a meeting with senior scientists to understand the progress of technology-intensive projects. We have some more news from the city. Madras Export Processing Zone celebrated Thiruvallavar Day with great respect and pride. Alex Paul Menon, the Development Commissioner, underlined the enduring relevance of the poet Thiruvallavar and his teachings. He highlighted the timeless values articulated by Thiruvallavar in Thirukural, ranging from Aram, the path of righteousness and moral living as a way of life, governance, ethics and justice to leadership and human dignity.
जी नीना, और चेन्नई के बाद दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है खास, आइए जान लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई प्रमुख उम्मीदवारों ने कल अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के चौथे दिन कुल 194 नामांकन दाखिल किए गए। नामांकन प्रक्रिया कल तक चलेगी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती आरएल ज्वाज ने एक पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल के तहत श्रीमती वाज ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए 3,000 से अधिक ऑटो रिक्शा के बेड़े को हरी झंडी दिखाई। श्रीमती वाज ने बताया कि जीवंत पोस्टर और नारों से सजे ये ऑटो रिक्शा मोबाइल जागरूकता इकाइयों के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से निर्वाचन आयोग दिल्ली के हर योग्य मतदाता को वोट देने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बांसेरा बैम्बू पार्क में चलाए गए मतदाता जागरूकता अभियान के लिए आयोजित पतंग उत्सव में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने दिल्ली वासियों से विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की।
फरत, हियर्स न्यूज़ फ्रॉम बेंगलुरु। Bengaluru South MP Tejasvi Surya has informed that the ambassador of the US in India, Eric Garcetti, will inaugurate the US consulate in Bengaluru tomorrow. He has informed that US consulate will initially function from the JW Marriott Hotel in the Garden City before moving to a permanent office. Tejasvi Surya thanked Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar for their support to this demand for a US consulate in Bengaluru. The consulate in the city will boost commerce and trade between the two countries and smoothen travel for business and entrepreneurs.
महीनीना, मुंबई से एक दुखद खबर आ रही है कि मुंबई नासिक राजमार्ग पर आज सुबह शाहपुर में एक लग्जरी बस, एक कंटेनर ट्रक और एक टेम्पो सहित तीन वाहनों की टक्कर में तीन यात्रियों की मृत्यु हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। चालक तथा अन्य यात्रियों सहित घायलों को शाहपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। घटना की जांच की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल की मौजूदगी में महाराष्ट्र राज्य सेल द्वारा शुरू की गई अटल मूल्यांकन परीक्षण और सीखना ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के लिए छात्रों की सहायता करना है। मंत्री पाटिल ने कहा कि इस पहल के माध्यम से छात्र मॉक टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से अपनी क्षमताओं का पता लगा सकेंगे।
To Hyderabad news now. Telangana IT and Industries D. Sridhar Babu urged the centre to support the development of Kaleshwaram Manthani Ramgiri corridor into an iconic spiritual and heritage tourism circuit. The minister presented an ambitious proposal to Union Minister for Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat in Delhi yesterday. He called on Mr. Shekhawat during an official visit and presented an ambitious proposal to the effect.
और अब पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। सातवां राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 18 जनवरी को कोलकाता में शुरू होगा और इस महीने की 26 तारीख तक चलेगा। पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग ने मिनवा नाट्य सांस्कृतिक चर्चा केंद्र के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कोलकाता में गिरीश मंच, मधुसूदन मंच और अन्य स्थानों पर भी विभिन्न भाषाओं के नाट्य मंचन किए जाएंगे।
इन मेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024-25 Shrachi Rar Bengal Tigers defeated UP Rudras 5-3 at the Birsa Munda Hockey Stadium in Rourkela last night. We have a report.
In what was a high-scoring thriller in the men's segment of the Hockey India League yesterday, the Shrachi Rar Bengal Tigers survived a late onslaught to demolish the UP Rudras 5-3 in Rourkela. Bengal upped the ante in the very first quarter as Olympics and World Cup winner Gauthier Bocard showed exemplary stick work to slalom past three defenders and score with a deft finish to put Bengal ahead in the 8th minute. The Tigers kept up the pressure as a great penalty corner conversion by specialist Jugraj Singh helped them go up 2-0 in the 12th minute. Bengal will go up by 3 goals in the first quarter itself, having outclassed their opponents. The Tigers went on to add two more goals to Jugraj's second of the match and a brilliant field goal by Abhishek at the start of the fourth quarter. However, there was enough time for the Rudras to mount a comeback as Sam Ward converted two penalty corners and Captain Hardik scored through a penalty stroke. But it was too little too late as the Tigers held on for a win that helped them climb up to the second spot in the points table. Bengal's third goal, netted by Sukhjeet, was the 100th of this edition of the competition. In the women's section in Ranchi, two unbeaten teams, the Odisha Warriors, met the Surma Hockey Club, with the latter taking their chances better and running out 2-1 winners. For Surma, Hina Bano and Sonam found the net, while Fike Moes pulled one back for the Warriors. Tomorrow, the Shrachi Rar Bengal Tigers will take on the Odisha Warriors in the women's section, and in the men's segment, the Delhi SG Pipers will meet the Kalinga Lancers. This is Shaurya Chaudhary reporting for Akashvani News.
वहीं खो खो विश्व कप में कल जीत के साथ भारत की पुरुष और महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय पुरुष टीम ने टूर्नामेंट के तीसरे दिन पेरू के खिलाफ 70-38 से जीत दर्ज की, जबकि महिला टीम ने ईरान को 116 के बड़े स्कोर से हराया।
वर्ल्ड गोस खो, होल इंडिया उड़ेगा।
भारतीय पुरुष खो खो टीम ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पेरू के खिलाफ 70-38 के अंतर से जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए टीम ने अपनी जीत की लय बरकरार रखी है। भारत ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाकर रखी और स्कोर में इतना अंतर ला दिया कि पेरू उसके बराबर नहीं आ सकी। मुकाबले में भारत के अनिकेत पोटे को बेस्ट प्लेयर और रामजी कश्यप को बेस्ट डिफेंडर चुना गया, जबकि पेरू के गिनर वर्गास को बेस्ट अटैकर का पुरस्कार मिला। इससे पहले दक्षिण कोरिया को 175-18 के अंतर से ऐतिहासिक शिकस्त देने के बाद भारतीय महिला टीम ने ईरान को 84 अंकों के भारी भरकम अंतर से हराकर खो खो क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया कि वे क्यों खिताब के दावेदार हैं। टीम ने ईरान के खिलाफ चारों टर्न में दबदबा बनाए रखा और ईरान को वापसी का मौका ही नहीं दिया। मैच में भारत की बेस्ट प्लेयर प्रियंका इंगले और बेस्ट डिफेंडर मीनू रही, जबकि ईरान की मोबिना को बेस्ट अटैकर का अवार्ड मिला। आज सवेरे के लिए अभिषेक कपिल।
In Indian Super League, Punjab FC will face Mumbai City FC at the Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi today. The match is scheduled at 7:30 a.m. Punjab FC has been struggling with form and lost their last two home games in the league, while Mumbai City FC will come into this fixture to maintain its streak of being unbeaten in last five games. In ISL rankings, Punjab FC is positioned 9th in the table with 19 points from 14 matches, and Mumbai City FC ranks at 6th with 23 points from 15 games.
और अब आइए महानगरों के मौसम का रुख कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई की बात करें तो आज वहां पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेकिन कोलकाता में दिन में आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
Farhat, now weather report from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 17 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 19 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और अब आइए नीना इतिहास के पन्नों को पलटते हैं. तो आज भारत के इतिहास में 16 जनवरी की तारीख देश की एक बेटी की उल्लेखनीय उपलब्धि की साक्षी है जिसने अमेरिका जाकर अंतरिक्ष यात्री बनने के अपने सपने को पूरा किया. जी हां, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उन्हें 2 बार अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना. हम कल्पना चावला की बात कर रहे हैं जिन्होंने 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से अंतरिक्ष में दूसरी बार उड़ान भरी. हालांकि उनकी ये उड़ान अंतिम साबित हुई क्योंकि 16 दिन के अंतरिक्ष मिशन के बाद पृथ्वी पर लौटते हुए 1 फरवरी को उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और चालक दल के अन्य 6 सदस्यों के साथ उनकी मृत्यु हो गई.
In 1681, Sambhaji was crowned as the successor of Chhatrapati Shivaji Maharaj in a function held at Rajgarh Fort. Sambhaji was the second Chhatrapati of the Maratha Empire, ruling from 1681 to 1689. He was the eldest son of the founder of the Maratha Kingdom, Shivaji.
और वहीं बात की जाए अगर 1681 की, तो आज ही के दिन शिवाजी के पुत्र संभाजी का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ. वहीं 1996 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 100 से अधिक नए आकाशगंगा को खोज निकालने का दावा किया.
In 1818, the Rana of Udaipur signed a treaty with the British to protect Mewar.
1989 में सोवियत संघ ने मंगल ग्रह के लिए 2 साल के मानव अभियान की अपनी योजना की घोषणा की.
In 1992, for the first time in a decade, India decided to import 1 million tons of wheat.
और अब आइए याद करते हैं कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकारों के साथ साथ कुछ फिल्मी हस्तियों को. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कामिनी कौशल की, जिनका आज जन्मदिन है. हिंदी फिल्मों की एक ऐसी अभिनेत्री और टीवी कलाकार जिसने अपनी शालीनता से सभी का दिल जीता. इनका वास्तविक नाम उमा कश्यप था. फिल्मी नाम कामिनी कौशल चेतन आनंद ने दिया और इसी नाम से ये जानी भी गई. यूं तो कामिनी कौशल ने कई यादगार फिल्में दी लेकिन फिल्म नीचा नागर और विराज बहू में निभाई गई भूमिका के लिए उन्हें खास तौर पर जाना जाता है. तो आइए सुन लेते हैं विराज बहू से ये खूबसूरत सा गीत जिसमें उन्होंने सीता की तरह अपनी परीक्षा दी थी.
सुनो सीता की कहानी, तेरो महलों की रानी, छोड़ घर भाग गई वनवास, किसी ने कदर न जानी.
डगर डगर भटके वनवासिन, पग पग ठोकर खाए, भूखी प्यासी फिरे वो वन में, मन में तीर छुपाए. पड़ गए छाले पाँव में, दो नैन कमल मुरझाए.
राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम.
पड़ गए छाले पाँव में, दो नैन कमल मुरझाए,
नैन कमल मुरझाए.
कैसे सुने कथा ये कोई, कैसे कोई सुनाए. राम सिया राम सिया राम सिया राम.
अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद जैसे सितारों की नायिका रह चुकी कामिनी कौशल आज बॉलीवुड में सबसे वरिष्ठ सबसे अधिक उम्र की अभिनेत्री हैं. शहीद, जिद्दी, नीचा नगर, नदिया के पार और आरजू जैसी ओल्ड क्लासिक फिल्मों की नायिका कामिनी कौशल 92 बरस की हैं. तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं का एक और खूबसूरत सा ये गीत.
मेरा नरम कर जुआ डोल गया, कोई प्यार की बोली बोल गया. मेरा नरम कर जुआ डोल गया, छुप छुप के कोई आता है और प्रेम की बंसी बजाता है.
इसके अलावा 1949 में आई फिल्म शबनम में शमशाद बेगम और मुकेश की आवाज में ये गाना भी काफी लोकप्रिय हुआ.
प्यार में तुमने धोखा सीखा, ये तो बताओ कैसे.
ओए फूल से एक भंवरे को उड़ा कर मैंने कहा, फूल से एक भंवरे को उड़ा कर मैंने कहा के ऐसे.
Today is the death anniversary of Carl Milton Smith. He was an American country singer known as Mr. Country. He was one of the genre's most successful male artists during the 1950s, scoring 30 top 10 Billboard hits. Here's Memory Number 1 by Carl.
¶¶
Alia Dana Horton celebrates her birthday. She was an American singer, actress, dancer and model. In 1999, Alia landed her first movie role in Romeo Must Die 2000, a loose adaptation of William Shakespeare's Romeo and Juliet, in 2000 alongside Jet Li. We remember her today with this song that she had sung during her audition for acceptance to the Detroit High School for the Fine and Performing Arts. Alia sang Ave Maria.
बांग्ला के अमर कथाशिल्पी और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की भी आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 15 सितंबर सन 1876 को हुगली जिले के एक देवानंदपुर गांव में हुआ। शरदचंद्र अपने माता पिता की 9 संतानों में से एक थे। शरदचंद्र ने 18 साल की उम्र में 12वीं पास की। शरदचंद्र ने इन्हीं दिनों बासा घर नाम से एक उपन्यास लिखा और ये रचना प्रकाशित नहीं हो पाई, लेकिन उनका उत्साह काफी बढ़ता गया। कॉलेज की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वे 30 रुपये मासिक के क्लर्क होकर बर्मा में पहुंच गए और शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की कथा साहित्य की प्रस्तुति जिस रूप स्वरूप में हुई, लोकप्रियता के तत्व ने उनके पाठकीय आस्वाद में वृद्धि की। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय अकेले ऐसे भारतीय कथाकार हैं जिनकी अधिकांश कालजयी कृतियों पर फिल्में बनी और अनेक धारावाहिक सीरियल बने। इनकी कृतियां देवदास, चरित्रहीन और श्रीकांत के साथ साथ कई सारी और भी हैं जो काफी लोकप्रिय हुई।
Kabir Bedi is an Indian film actor who celebrates his birthday today. He is noted for his role as Emperor Shah Jahan in Taj Mahal, An Eternal Love Story, and the villainous Sanjay Verma in the 80s blockbuster Khoon Bhari Maang. He also played the pirate Sandokan in the popular Italian TV miniseries. Here's an excerpt from...
Being asked to play Sandokan was one of the greatest honors that any actor could ever be given. And I was the lucky one.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार ओंकार प्रसाद नैयर का। अपने सुरों के जादू से आशा भोसले और मोहम्मद रफी जैसे कई पार्श्व गायक और पार्श्व गायिकाओं को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने वाले महान संगीतकार ओपी नैयर के संगीतबद्ध गीत आज भी काफी लोकप्रिय हैं। तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध गीतों की ये खूबसूरत सी मेडली।
मुहब्बत कर बैठे, हाय मुहब्बत कर बैठे।
आपके हसीन रुख से आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आप गिन गाह ने कहा तो कुछ जरूर है।
साल 1926 में लाहौर में जन्मे ओपी नैयर ने आसमान फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उनको पहचान गुरुदत्त की फिल्मों आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी और तुमसा नहीं देखा से मिली।
Helen Fola Shade Adu, known professionally as Shade, is a British-Nigerian singer-songwriter and actress. Here's Smooth Operator from her album Diamond Life.
No need to ask, he's a smooth operator.
कार्यक्रम का अंत करते हैं राम नरेश त्रिपाठी की एक खूबसूरत सी कविता से जिनकी आज पुण्यतिथि है। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar. Namaskar.